Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Brahma, a Brahma, Brahma Napunsak hai, Brahma Pulling hai, Brahma Brahmano Brahmana. बोलेंगे याद रखना समझ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदान स प्रहिणति तस्मै उत्पन्न ब्रह्मा को पैदा करके जो वेद ज्ञान उसको स्थापना किया इसी बात को भागवत में पहले आता है जन्माद्यस्य जतु अन्नयात् इतरतस्य अर्थेषु अभिज्ञसरा तेने ब्रह्मा ऋजा आदि कवये मुह्यन्ति जसुर तेने विस्तार करते हैं ब्रह्मा आदि कवये आदि कवि आनी बात आदि कवये आदि कवि कौन है कहो के वाल्मीकि है यह बोलते ना रामायण में मुह्यन्ति जत सूरया देवता लोग जहां से मोहित हो जाते हैं तो मतलब कहने का ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है तो ब्रह्मा यो ब्रह्मा विदधाति पूर्वम विद ब्रह्म देवानाम प्रथम संभवभूव देवताओं से सबसे पहले ब्रह्मादि उत्पन्न हुए ब्रह्म तो ब्रह्म के अंदर जो है ना इस ब्रह्म से पहले भी कोई यार पूर्व पहले था पहले कोई था तो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे भगवान विष्णु के नाभि कमल से तो ब्रह्म भगवान विष्णु कहां से पैदा हुए हाँ नहीं नहीं देखो आप देवी भागवत पढ़ो ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव है आनी बाब त्रिदेव है ये तीनों देव आनी बाब जब अकेला अकेला रहा किसी ने 3 लाख वर्ष तपस्या किया किसी ने 3.5 लाख वर्ष तपस्या किया किसी ने 5 लाख वर्ष तपस्या किया लक्ष्मी ने 1 लाख तपस्या किया दुर्गा ने 1 लाख तपस्या किया सरस्वती ने 1 लाख तपस्या किया तब जाकर के पद मिला इन लोगों आनी बात ये त्रिदेव है और तीनों ने विचार किया हम कहां से आए कहां से आए कहां से आए कैसे आए कैसे आया तो आकाशवाणी होती है हाँ हाँ नहीं तब करो नहीं आकाशवाणी होती है वो तो मणि क्या मणिभद्र पूरा सा कुछ है उसमें चले जाओ तुमको पता चलेगा तुम कौन हो तो तीनों एक विमान में बैठ करके चले गए विमान आया उनके सामने तो विमान में बैठ करके गया जाते 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 एक जगह में गया जहां जाने के बाद तीनों के तीनों स्त्री हो गया ब्रह्मा विष्णु और तीनों स्त्री बन गया तीनों स्त्री हाँ तो वहां रहा तो देवी ने उनको उपदेश किया उपदेश करके बोले तुमको पैदा करने वाला मैं ही हूं तुमको पैदा करने वाला मैं ही हूं तुम हमारी शक्ति से शक्तिमान होकर जीत वह तीनों को तीन लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा दिया तीनों को और तीनों लेकर के चला हाँ फिर पुरुष बन गया तीनों जाओ तुम लोग सृष्टि रचना करो तुम पालन करो आ तीनों को दिया ये तुम्हारा सहायक बनेगा लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा ये त्रिदेव है ये त्रिदेव से परे एक देव है वो शाश्वत देव है ये कर्मदेव है ये सब कर्म के द्वारा साधन के द्वारा देवत्व को प्राप्त किया वो त्रिदेव रहेगा ये तीनों चला जाएगा कर्म फल भोग समाप्त हो जाए जैसे अभी आप सुनते हो कि ब्रह्मा जी की आयु कितना है 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है तो ब्रह्मा जी की आयु का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उनका पतन हो जाएगा ऐसे इसके बाद में भगवान विष्णु की आयु 100 वर्ष है तो भगवान विष्णु का आयु समाप्त हो जाए, फिर रुद्र का आयु, शंकर जी का आयु 100 वर्ष है, इनका भी आयु समाप्त हो जाएगा तीनों का, तो फिर महान सृष्टि के क्रम आएगा। इनके भी त्रिदेव भी कर्म के अनुसार ही है, त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु आदि, इसीलिए तीनों झगड़ा करते हैं ना, तीनों के घर में झगड़ा है, शंकर के घर में भी बेटा बेटी लेकर के, पत्नी को लेकर के झगड़ा है, वो इधर जाता है, वो इधर जाता है, उधर ऐसा, भगवान विष्णु की या लक्ष्मी चली जाती है, घोड़े के घर में चली जाती है। लक्ष्मी एक बार देख रहे थे, उनका भाई जो है ना आ रहा था, वो उसमें बैठ करके, वो अश्व अश्व है ना, क्या नाम उनका, तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी लक्ष्मी ओ लक्ष्मी दो बार तीन बार चिल्लाया तो सुनी नहीं, वो आपने घोड़ा की तरफ देख रहा था। तो भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा तुमको घोड़ा प्रेम प्रिय लगता है, मैं प्रिय नहीं लगता हूं, मेरी बात सुनते नहीं, जाओ घोड़ा के शरीर में चले जाओ। अभी जब लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी घोड़ी का स्वरूप बना, तो लक्ष्मी रोने लगी, हमारे मुक्ति कैसे होगी, हम तो ऐसी कुदृष्टि से नहीं देगा, मेरा भाई है आने बात, क्या नाम उसका, अश्व का नाम, समुद्र के समुद्र से मंथन से निकलो, उच्चश्रवा उच्चश्रवा, फिर जो है ना, तो कहते तुम्हारी मुक्ति होगी जब तुम्हारे गर्भ से संतान पैदा होगा। तो भगवान विष्णु ने इसका अभिशाप दिया, लक्ष्मी चली गई कुरुक्षेत्र के मैदान में, घोड़ी बनकर रहने लगा, तपस्या करने लगे भगवान शंकर की, तो शंकर प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए, बोले लक्ष्मी तू अपने पति को छोड़कर हमारे क्यों तपस्या कर रहे, साधन कर रहे, पति का पत्नी का काम है पति का सेवा करना, पति की आराधना करना। बोले यही तो बात है, इसीलिए तो मैं आपको सेवा बुला रहा हूं। बोले क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे हमको अभिशाप दिया, मैं अब इससे मुक्त कैसे हूं। वो बोलता है कि तेरे गर्भ से पैदा होगा बच्चा, पैदा होगा तब जाकर तेरी मुक्ति होगी अश्वशरी से। तो वो तो वैकुंठ में रहता, मैं तो कुरुक्षेत्र में रहता, मर्त्यलोक में दोनों के संगम कैसे होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, जा मैं उनको प्रेरणा देता हूं। तो भगवान विष्णु जो अश्व बन करके वहां गया, तो उसमें जो पैदा हुआ हयग्रीव पैदा हुआ था लक्ष्मी, तो देखो झगड़ा आएगी नहीं वहां। इसीलिए पुराणों की कथा ऐसे बहुत आती है, एक नहीं दो नहीं, तो कहने का हमारे त्रिदेव कर्म के अधीन है, ये जो त्रिदेव है ना, ये कर्म, भगवान विष्णु है, भगवान रुद्र है, भगवान ये ब्रह्मा जी है, ये तीन देव तीनों गुणों के अंदर है। वह तीन गुण है ना, सत्वगुण रजगुण तमगुण, ये त्रिदेव त्रिगुण के अंदर है, इसीलिए कर्म गुण उसको पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपके लिए तो बता रहे हैं ना, ये जो आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओगे तो कर्म तुमको बांधेगा नहीं, न इष्ट कर्म बांधेगा न पूर्त कर्म बांधेगा। उन लोग तो वो अधिकार के लिए तपस्या किया था, वो अधिकार हमको मिले, वो अधिकार हमको मिले। वैसे हमारे आश्रम में समझो मंडलेश्वर जी है, फिर उसके चेला है शिष्य है, तो शिष्यों में होड़ लगते रहते, हमको मिलेगा पद, कोठारी पद मिलेगा, फलाना पद मिलेगा, उसके लिए मंडलेश्वर के आगे पीछे दौड़ता है कि नहीं, घूमता है कि नहीं घूमता है, आगे पीछे घूमता रहता है, हमको खुश होगा तो हमको मिलेगा, हमको मिलेगा पद, है नहीं बात। तो ऐसे जो पद के लिए तपस्या करता है तो उसको पद मिलता है, साधना करते हैं तो मिलता है, तुम साधना करो तुमको वो पद मिलेगा, पर लाखों लाखों वर्ष तपस्या करना पड़ेगा। हिरण्याक्ष ने 1,00,000 वर्ष बच करके तपस्या किया था, भगवान ब्रह्मा जो है ना उनको दर्शन दिए, 1,00,000 वर्ष, वो देवता के हिसाब से बोलते, हमारे हिसाब से नहीं। तो लाख बार तो यहां तो एक दिन एक घंटा नहीं बैठा जाता है, सवा पूरा हो गया। अरे यहां तो फिर तो ये लाख वर्ष की बात ही है। हाँ चलिए, तो इसीलिए नहीं के पूर्तम अक्षिपत, पूर्तम ने पूर्त कर्म, तो पूर्त कर्म उपलक्षित इष्ट कर्म भी समझ लेना। पूर्त नहीं बांधेगा तो इष्ट बांधेगा ऐसा नहीं समझ लेना। क्यों? ज्ञान के अंदर शक्ति है अज्ञान को मिटाने का। जो अज्ञान नाश हो जाता है तो तुम्हारा संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, तीनों प्रकार के कर्म भस्मीभूत हो जाएगा। तो तुमको पद की जरूरत नहीं है, तुमको मोक्ष चाहिए ना। तो मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो संसार के बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्कर से आने वाला छुटकारा चाहते हो तो ज्ञान का आश्रय लो। इनका कहने का तात्पर्य ही है, तत्र ध्वनिम कुरुस्व, निष्ठाम कुरुस्व, समाधिम कुरुस्व। वहां पर तुम समाधि करो, निष्ठा करो, कहां? ज्ञान में, वो पूर्व ब्रह्म में। जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है ना, उसका सब कर्म समाप्त हो जाता है। जथे जांग्री समिद्योग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो ज्ञान अग्नि जो है ना, सभी कर्मों को जला करके भस्म कर देता है। तो उसके लिए न पूर्त कर्म रहता है, न संचित कर्म, न क्रियमान कर्म, न प्रारब्ध कर्म, न इष्ट कर्म, कोई भी कर्म नहीं रहता, सब कर्म भस्म होता है। तो सब कर्मों को एक साथ भस्म करने के लिए, अगर यदि तुम कहो कि मैं न भोग से कर्म समाप्त करूं, ये संभव नहीं है। ये अनंत जन्मों का कर्म, अनंत जन्म तुमको भोगना पड़ेगा। तो जब अनंत जन्म भोगोगे तो नया कर्म भी हो जाएगा, फिर क्रियामान कर्म हो जाएगा, फिर जन्म होता जाएगा, जन्म होता जाएगा, कर्म होता जाएगा, जन्म कर्म पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठर शयनम, करना ही पड़ेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। हाँ चलिए, एवं कुर्वतो मम किम ततो भवति। शिष्य प्रश्न करते, महाराज ऐसा करने से मेरे को क्या होगा, क्या मिलेगा? मिलना चाहिए ना कुछ। इत्याह नहीं इति ते, नहीं ते वो इस मंत्र में जो आया उसका प्रतिकूल है। नहीं ते पूर्त स्मार्त कर्म इष्टम श्रोतम स कर्म अक्षिपन न पुनर्भोग हेतु बदनाती। देखा, भोग के लिए तुमको कर्म बांधेगा नहीं, न कर्म बद्धते, कर्मणा बद्धते जंतु विद्या से विमुच्यते, कर्म के द्वारा बन जाता है। तो कल ऐसा करने से तुमको कर्म बंधेगा नहीं, कैसा करने से? ये जो यहां बता रहा है, देखा नहीं चाहिए थी, नहीं ते पूर्तम स्मार्तम कर्म इष्टम श्रोतम स, श्रोत कर्म स्मार्त कर्म, इष्ट कर्म पूर्त कर्म, ये दोनों कर्म क्या नहीं करेगा? अक्षिभन न पुनर्भोग हेतु, पुनर्भोग देने के लिए आनी बात, फिर आगे जन्म लेने के लिए तुमको नहीं बंधेगा। न बदनाते ही, क्यों न बदनाता है, क्यों नहीं बंधेगा? ज्ञान अग्नि न सविजेश्य, सविजेश्य दग्धत्वा, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम तम हो पंडितम बुधा, आया कि नहीं? तो ज्ञान रूपी अग्नि जो है सबीज, सबीज समझ लेना, बीज के साथ, बीज वो अविद्या अज्ञान। तो अज्ञान का जब नाश करेगा तो कर्म किसके आश्रम में रहेगा? देखो, विद्या अविद्या नियंत्री तेज सिमिर संगवत, विद्या अविद्या को नाश करेगा। जब अविद्या नाश हो जाएगा, अविद्या के आश्रम में रहने वाला इष्ट कर्म, पूर्त कर्म, श्रोत कर्म, स्मार्त कर्म रहेगा? क्यों? कारण नाशात कार्य नाश। जब तंतु को तुमने जला दिया तो तंतु के आश्रम में रहने वाला जो वस्त्र, वस्त्र किसके आश्रम में रहेगा? जब तुमने धागे को जला दिया, वस्त्र रहेगा धागे के आश्रम में? क्या नहीं समझे? रस्सी को जला दिया सर तो रह जाएगा ना। तो कहते कारण है क्या? अविद्या। अविद्या निवृत्ति मुक्षः, मुक्ति की अविद्या की अज्ञान की निवृत्ति का नाम। तो अविद्या को तुमने नाश कैसे किया? विद्या के द्वारा। विद्या अविद्या निहंती, विद्या अविद्या को हनन करेगा, नाश करेगा, जलाएगा, भस्म करेगा। तो विद्या जो अविद्या को जला दिया तो अविद्या के आश्रम में रहने वाला सुबह सुबह कर्म, इष्टपूर्त कर्म, स्रोत स्मार्त कर्म, बड़े बड़े कर्म, छोटे छोटे कर्म, कोई भी कर्म क्यों ना हो, अनिवार्य वो कर्म किसके आश्रम में रहेगा? जब कारण नाश हो गया तो कार्य किसके आश्रम में रहेगा? कहना बाप मर गया और बेटा सब अनाथ हो गया, अनाश्रय हो गया, इनको आश्रय कौन देगा? तो सब धारण देता है इसका आश्रय तो केवल भगवान ही है, बोलता है कि नहीं? इसका आश्रय भगवान ही है। ऐसे तो जब तुमने अविद्या को नाश कर दिया तो अविद्या है तो भगवान है ना। इसीलिए हमारे पंचदशी में हुआ प्रसंग आता है, माया का दो बेटा है, एक ईश्वर है एक जीव है। माया का दो बेटा है, जीव और ईश्वर है। आनी बात, जीव और ईश्वर जो है माया का बेटा है, परंतु एक माया, माया का अविद्या, अविद्या प्रधान है, एक माया प्रधान है। आनी बात, माया में पड़ा हुआ जो ब्रह्म का प्रतिबिंब वो ईश्वर बना, और अविद्या में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब वो जीव बना। मायावश न जीवेश करोति, माया से अविद्या से स्वयं भवति। माया अवश्य जीव ईश्वर बना देता है। माया, माया के जो अविद्या या प्रधान है ना, तम प्रधान अविद्या है, तो उसमें जो पड़ा हुआ जो चिदाभास वो बनेगा जीव, और माया में पड़ा हुआ जो चिदाभास वो बनेगा ईश्वर। हाँ, एक ही उपाधि, सत्य प्रधान उपाधि और तम प्रधान उपाधि, तम प्रधान आने बात कैसे देखो, एक घड़ा है, घड़ा कांच से बना हुआ है, कांच से जमते हैं ना शीशा, और एक घड़ा मिट्टी से बना हुआ है, दो घड़ा है, तो दोनों घड़ा में तुमने दिया रखा, रखा कि नहीं? दीपक तो दोनों में रखा, परंतु एक घड़ा का प्रकाश बाहर जाता है, दूसरा घड़ा का दीपक या बाहर नहीं जाता, क्या कारण है? आवरण तो है, एक सत्य प्रधान आवरण है, माने कांस प्रधान स्वच्छ उपाधि है, प्रकाश जो है बाहर जाता है, स्वच्छ प्रधान जो उपाधि है, स्वच्छ उपाधि है कि नहीं? कांस का जो घड़ा है स्वच्छ उपाधि है, उसका प्रकाश बाहर जाता है, और जो मलिन मलिन उपाधि है कौन? मिट्टी। तो मिट्टी में रहा हुआ जो घड़ा है उसका प्रकाश बाहर नहीं जाता है। ऐसे मलिन उपाधि वाला हुआ कौन? अविद्या। मलिन उपाधि हुआ अविद्या, अविद्या में पड़ा हुआ जो चिदाभास वो है जीव, वो अपने को नहीं जानता है, और सत्व प्रधान जो है ना माया, तो माया में पड़ा हुआ जो चिदाभास वो क्या है? ईश्वर बना। तो ईश्वर माया को अपने बस कर लेता है और जीव अपने अविद्या की बस में हो जाता, बस इतने अंतर है। माया उपाधि वाला होगा परिचिन या व्यापक, माया उपाधि है ना? नहीं बेटा, नहीं बेटा, माया जो है ना कांस के घड़ा के सामने जगह, और जो है ना घड़ा मिट्टी का घड़ा जो है ना अविद्या के अंदर है, तो अविद्या में भी पड़ा हुआ चिदाभास और कांस के घड़ा में हुआ भी चिदाभास पड़ा, परंतु दोनों का प्रकाश बाहर जाता है कि नहीं जाता है? क्यों, किसका जाता है? कांस वाला जाता है और मिट्टी घड़ा वाला नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा। क्यों? जड़ उपाधि है, मलिन उपाधि है। और वो तो स्वच्छ उपाधि कांस के घड़ा में पड़ा हुआ जो चिदाभास, वो चिदाभास ने क्या किया, कांस के घड़ा को अपने बस करके अपने प्रकाश को बाहर फेंक दिया, वो स्वयं आनी बात माया उपाधि वाला ईश्वर बन गया। और जो मलिन उपाधि वाला अविद्या के अंदर जो पड़ा हुआ जो चिदाभास, वो मिट्टी के घड़ा के जगह में उसने क्या किया, अविद्या के गुण को अपने में धारण के लिए अहमता कर्ता भोक्ता सुखी दुखी आदि सब क्या से जाए, अविद्या का अविद्या का कार्य को अपने में मान करके सुखी दुखी संसारी बन गया। और ईश्वर जो है माया का गुण समझ करके वह से स्वतंत्र हो गया। तो माया आदि से हुआ ईश्वर, अविद्या से हुआ कौन जी, है नहीं बात? इसीलिए बोलते हैं चिदानंद माया ब्रह्म प्रतिबिंब समन्वित तमोरज सत्य गुणा प्रकृति द्विविधा सा। ब्रह्म कैसा है? स्वतः चित, स्वतः माने स्वतंत्र रहेगा, अपने आप रहेगा, तो चित रहेगा, चैतन्य घना सदघना चित घना आनंद घना रहेगा। माया विशिष्ट हो गया तो अंतर्जामी बनेगा, माया विशिष्ट होकर के अंतर्जामी बनेगा। कोई जो सदघन चितघन आनंदघन ब्रह्म है, परमात्मा है, वो प्रकृति के अंदर उसका प्रतिबिंब पड़ता है। प्रकृति में प्रतिबिंब पड़ने से प्रकृति दो भाग में बांट जाती है, एक का नाम अविद्या, एक का नाम माया। तो माया में पड़ा हुआ जो चिदाभास वो बनता है ईश्वर, अविद्या में पड़ा हुआ जो चिदाभास वो बनता है जी। तो चिदाभास दोनों में ही है, दोनों चिदाभास। तो माया आभास ही न जीवेश करोती, माया आभास के द्वारा जीव भी बनाता है और ईश्वर भी बनाता है, और दोनों क्या है, माया का बेटा है। हाँ, ब्रह्म इससे परे है, इसीलिए संत लोग दृष्टान्त। अरे हो गया समय, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।